अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि ऐलान किया था, ज़्यादा तालिबीन हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। कुछ वजह है कि मुझे इसके ज़रा कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाने हैं किसी के लिए, तो इस वजह से इरादा तो इनिशियली यही था कि तहसील बहेशी देवर को ज़रा और कंटिन्यू करेंगे। हाँ, लेकिन अभी उसके बजाय ज़्यादा तालिबीन से कुछ हदीसें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ पे वापस जाएंगे। शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما، رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح। तो इन दुआओं के साथ हम दोबारा से ज़्यादा तालिबीन से हदीसें पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी रेफरेंस बुक है रोज़ातुल तालिबीन, जो ज़्यादा तालिबीन की शरह है, और इसके हिसाब से हदीस नंबर 78 जो कि पेज नंबर 148 पर है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। आसिफ, अगर आप पेज नंबर यहाँ पर लिख दें ताकि अगर कोई बाद में उसको पता हो कि रौज़ातुल तालिबीन का पेज नंबर 148। इसकी हेडिंग आपको बता रही है कि ये नौन आखरुम मिनहू है। ठीक है, नौ जो है वो किस्म को कहते हैं, जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज़ को, मुख्तलिफ नौ या टाइप जैसे कह सकते हैं, टाइप तर्जुमा होगा इसका इंग्लिश में। और आखर जो है, आखर का मतलब होता है अनदर, ठीक है, यानी एक और। आखिर लास्ट को कहते हैं और आखर जो है वो एक और को कहते हैं या अनदर को कहते हैं इंग्लिश में जैसे, ठीक है। तो मिनहू, मिनहू में मिन जो है हर्फ जर है और हु जमीर है, तो मिनहू मतलब फ्रॉम इट, ठीक है। तो हम यानी ओरिजिनली पढ़ के आ रहे थे, जो पीछे से एक सब्जेक्ट मैटर चल रहा था वो था जुमला इस्मिया का, ठीक है, यानी जुमला इस्मिया हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर जो है एक मिनट के वन, हाँ हेडिंग क्या थी पीछे, नौन आखरुन मिन, हाँ जुमला इस अल जुमलतुल इस्मिया ना, हाँ तो जुमलतुल इस्मिया ही हमने शुरू किया हुआ था, और इसमें से अब एक दूसरी नौ शुरू कर रहे हैं, ठीक है, इसमें से दूसरी नौ। अच्छा, इसमें यहाँ पे लिखते हैं कि मुसन्निफ यहाँ से भी जुमला इस्मिया को बयान करेंगे, मगर यहाँ वो जुमला इस्मिया आएगा जिसके शुरू में ला नफी जिन्स का होगा, ठीक है, यानी ला होगा कौन सा वाला ला, नफी जिन्स का ला, ठीक है। फिर खुद ही बता रहे हैं कि ला नाफिया की चार किस्में हैं, ठीक है, यानी ला जो कि नफी करता है ना, उसकी चार किस्में, क्योंकि ला जो है वो दूसरी किस्म का भी होता है जिसको कि लाए नहीं कहते हैं, नहीं, नून झटके वाली हा या नहीं, ठीक है। तो नहीं का मतलब क्या होता है अरबी के अंदर, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, ठीक है। तो इसके अंदर नहीं का लफ्ज जो है उसका क्या मतलब होता है, रोकना, मुनकर से रोकना, ठीक है, जिस चीज को शरीयत ने मना किया है उससे रोकना। तो नहीं का मतलब होता है रोकना यानी फॉरबिड करना। तो लाए नहीं जो है वो ला होता है जो कि रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो ला है वो लाए नहीं नहीं बल्कि लाए नफी है, नफी का मतलब होता है निगेट करना, ठीक है। अच्छा, निगेट करने की चार किस्में होती हैं अरबी अरबी जुबान के अंदर, ठीक है, जो ला नगेट करता है उसकी चार किस्में होती है। नंबर वन, नफी जेंस के लिए, ठीक है, तो नफी जेंस ही यहाँ पर डिस्कस्ड है, या ये जो हदीसें आ रही हैं ये इनमें लाए नफी जेंस है। लाए नफी जेंस होता क्या है तो वो मैं आगे बताता हूँ इंशाल्लाह। दूसरा, लाए नफी होता है बमानी लैसा, ठीक है, तो लैसा जो है वो भी यानी बेसिकली निगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वो जो ला होता है वो बमानी लैसा, यानी उसके अंदर लैसा के ही मानी आते हैं, ठीक है। अब इसकी तफसीर के लिए बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन वो अभी चूँकि उसका टॉपिक नहीं है तो हम तफसील। दूसरा जो यानी तीसरा वो है जवाब जिद नाम, ठीक है, यानी नाम की जिद क्या होती है, ला होता है, ठीक है। जैसे आपसे कोई सवाल पूछे ना कि जी तुम्हारा क्या, कि क्या तुम अच्छे हो, अच्छी हालत में हो, तो अगर आप अच्छी हालत में हैं तो आप क्या जवाब देंगे? नाम, नाम का मतलब हाँ, ठीक है। और अगर आप अच्छी हालत में नहीं है तो आप क्या जवाब देंगे? ला, ठीक है, यानी नहीं, मैं अच्छी हालत में नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जिद नाम, यानी नाम की जिद है ला, तो ये तीसरी किस्म हुई। और चौथी किस्म जो है वो ला नाफिया अतफ के लिए, ठीक है, यानी है तो वो ला नाफिया ही लेकिन अतफ के लिए इस्तेमाल होता है। और अतफ का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना, कॉन्कैटिनेट करना, ठीक है। तो ये भी एक किस्म का ला नाफिया होता है, कॉन्कैटिनेट करने के लिए, लेकिन मानी उसके वही नफी करने के होते हैं, ठीक है। अब यहां पर ला नफी जिंस मानी में नफी कमाल के लिए होगा, या ला नफी जिंस का मतलब क्या होता है कि ये जो ला है ना, ये पूरे जिंस की नफी कर देता है, पूरे जिंस की नफी करता है उस चीज की जो कि इसके बाद आ रही है, यानी इस ला के बाद जो इस्म आ रहा है ना, उस इस्म के पूरे जिंस, पूरी गोया के क्लास की नफी कर देता है, ठीक है। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे दीन की बुनियाद है, क्या है? कलमा तौहीद, ठीक है। कलमा तौहीद के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, तो उसमें भी जो ला है ना शुरू में, वो ला नफी जिंस है, तो वो किसकी नफी कर रहा है? इलाहा, ठीक है। तो ला इलाहा का मतलब क्या होता है कि नहीं है कोई भी माबूद कहलाने के लायक, ठीक है, यानी माबूदों की कोई भी किस्म जो है ना, जो दुनिया के अंदर कभी भी पाई गई या पाई जाएगी, राइट, उन सब की नफी कर दी, ठीक है। कोई भी नहीं है बिल्कुल इबादत के लायक, तो कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के, ठीक है। तो ये भी ला नफी जिंस है, ओके। तो माबूदों की तमाम क्लास की नफी कर दी। उसी तरीके से ये इस्तेमाल अरबी जुबान के अंदर बहुत ज्यादा होता है, और ये अमूमी तौर पर भी हमें नजर आता है। जैसे इसकी एक मिसाल ये आदेश देता है, फनी सी मिसाल है, यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर एक वो है ना, चिकन ब्रोस्ट की जो चेन है ताजिज, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ताजिज की जो चिकन, ताजिज का जो स्टोर होता है उसके बाहर उन्होंने ये लिखा हुआ होता है, ठीक है, इनके बिल बोर्ड्स के ऊपर लिखा होता है, ला ताजिजा इल्ल ताजिज, ठीक है, कि कोई कोई ताजा कहलाने के लायक है ही नहीं सिवाय ताजिज के, ठीक है, यानी जो हमारा चिकन है ना, बस वही ताजा है और दूसरा कोई चिकन ताजा कहलाने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो वो भी ला नफी जिंस ही है, ठीक है। तो इस तरीके से उमूमी तौर पर बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो नबी अलैहि सलाम ने अपनी हदीसों के अंदर भी बात को पक्का करने के लिए, मुहक्किक करने के लिए, नफी कमाल के लिए, कि किसी चीज की कामिल नफी करने के लिए ला नफी जिंस इस्तेमाल फरमाया, ठीक है। जैसे कि यह हदीस है अमानतदारी और ईफाए अहद की अहमियत के बारे में, फरमाते हैं कि ये हदीस इस तरह से बनती है, पीछे इसकी इबारत लिखी हुई है, अन अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, काला, उन्होंने फरमाया, फलम्मा खतबुना खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफ गलत लिखा हुआ है, एक मिनट, गालबन ये काफ के काफ नहीं है, ये फा होना चाहिए, कि जब खिताब किया हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या खैर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये इबारत मैंने पहली दफा देखी है। असल इबारत तो ये क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानता लहू वला दीना लिमन ला अहद लहू, ठीक है, ये इस हदीस का टेक्स्ट है, और बैहकी में फी शेबल ईमान ये नकल की गई है, ठीक है। बैहकी जो है वो हदीस की मशहूर किताबों में से एक किताब है, अगरचे के ये सहाय सित्ता में शामिल नहीं है, लेकिन सहाय सित्ता के बाद शायद सबसे मशहूर किताब जो है वो मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम बल्कि मुअत्ता इमाम मालिक तो सहाय सित्ता के अंदर भी बहुत सारे उलमा शामिल करते हैं, तो मुअत्ता इमाम मोहम्मद फिर एक मशहूर किताब है हदीस की, और बैहकी जो है ना ये बहुत मशहूर और बड़ी किताब है हदीस की, उसके अंदर भी बहुत सारी सही हदीसें मौजूद हैं, ठीक है। तो ये तो सही हदीस ही है क्योंकि इस हदीस को मिशकात शरीफ में शामिल किया गया, ठीक है, और मिशकात शरीफ में ना सिर्फ और सिर्फ सही हदीस शामिल की गई है, لیکن وہ صرف بخاری اور مسلم کی حدیثیں نہیں ہیں بلکہ بخاری شریف سے جو میں تو ساری صحیح حدیثیں ہیں اور مسلم شریف میں بھی ساری ہی صحیح حدیثیں ہیں، لیکن ان کے بعد جو سنن ابی داؤد ہے اور سنن نسائی ہے، تو ان سب کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں صحیح حدیثیں ہیں، تو ان سے بھی صحیح حدیثیں لی گئی ہیں، اور بھی ہیں، دارقطنی بھی ایک حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر بہت سی صحیح حدیثیں موجود ہیں، تو وہاں سے صحیح حدیثیں لی گئیں، اور بیہقی کے اندر بھی بہت سی صحیح حدیثیں موجود ہیں، اس کے اندر سے بھی لے کر کے مشکات شریف کے اندر نقل کی گئی، اور مشکات شریف کی صحیح ہونے کے اوپر امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مشکات شریف میں بھی کوئی ضعیف حدیثیں موجود ہوں، ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مشکات شریف جو ہے نا وہ یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ یہ صحیح حدیثوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا ایمان نہیں، لا ایمانا، نہیں ہے ایمان، لمن، لام جر ہو گیا، لام جر، اور من جو ہے وہ موصولہ، تو من کا مطلب ہوتا ہے جو یا جس، ٹھیک ہے، جو یا جس سے ترجمہ کرتے ہیں، تو لمن کا ترجمہ کیا ہوا، جس کے لیے، کیونکہ لی حرف جر کا ترجمہ عمومی طور پر لیے سے ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہیں ہے ایمان جس کے لیے لا امانت لہو، نہیں ہے امانت اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، لا امانتا کے اندر بھی لا نفی جنس ہے، ٹھیک ہے؟ اور امانتا اسم ہے اس کے بعد، اور لہو کے اندر جو لا ہے وہ بھی نام جر ہے، لیکن جب ہو ضمیر کے ساتھ لام جر لکھا جاتا ہے تو زیر کے ساتھ نہیں بلکہ زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن ہے یہ بھی لام جر ہی، ٹھیک ہے؟ حروف جار جو 17 ہوتے ہیں نا، ان 17 میں سے ایک لام جر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لمن میں بھی لام جر ہے، اور لہو کے اندر جو لام ہے وہ بھی لام جر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور بڑی بات، بڑی اہم بات جو کہ لا نفیجنس کے لیے ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے نا، تو وہ اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالت نصب، حالت نصب کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو ہم نے پیچھے بتایا ہے کہ عربی زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر حالتیں آتی ہیں، کنڈیشنز آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں ان کو، تو وہ اسٹیٹس کیا ہوتی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ اسٹیٹس کے نام یاد ہے کسی کو؟ یا کون کون سی حالتیں آتی ہیں عربی الفاظ کے اوپر؟ تھوڑا سا ریویژن بھی ذہن پہ زور ڈالیں، کن کن اسٹیٹس کے اندر عربی الفاظ ایگزسٹ کر سکتے ہیں، کن کن حالتوں میں؟ نصب، جر، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ دو آپ نے بتا دیے، دو اور بھی ہیں، رفع، نصب، جر، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین ہو گئے، اور نہیں، امر جو ہے یہ حالت نہیں ہے، امر تو ٹینس ہے، جس کو صیغہ کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے؟ تو سٹیٹس جو ہے نا وہ رفع، نصب، جر، یہ تین سٹیٹس اسم کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ماشاءاللہ شاہد صاحب نے جزم بتایا، یہ چوتھی سٹیٹ ہے، لیکن یہ جو سٹیٹ ہے نا یہ صرف فعل پر آ سکتی ہے، یہ اسم پر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ رفع اور نصب یہ اسم پر بھی آ سکتے ہیں اور فعل پر بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جر جو ہے وہ صرف اسم پر آ سکتا ہے، اور جزم صرف فعل پر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی فعل حالت جزم میں ایگزسٹ کر سکتا ہے، حالت جر میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا، اسی طرح اسم حالت جر میں ایگزسٹ کر سکتا ہے، حالت جزم میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں جو اسٹیٹس ہیں نا یہ آپس میں میوچلی ایکسکلوسیو ہے، ٹھیک ہے؟ تو لائن آف ایجنس کیا کرتا ہے کہ اپنے بعد جو اسم آتا ہے اس کو حالت نصب میں ڈال دیتا ہے، اور اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ اس اسم کا جو، اگر وہ اسم مفرد ہو، سنگولر مفرد، ٹھیک ہے، تو اس کا جو لاسٹ لیٹر ہے اس کے اوپر زبر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حالت نصب کی پہچان ہوتی ہے، البتہ حالت نصب جو ہے نا وہ، یعنی بلکہ کوئی بھی حالت، وہ ٹپیکلی جو ہے نا وہ تنوین کے ساتھ آتی ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، ٹھیک ہے؟ یہ ڈیفالٹ پہچان ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، جس کو تنوین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو حالت نصب ہے یہ صرف ایک زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لا نفی جنس جو ہے نا وہ ایسے حالت نصب میں ڈالتا ہے کہ وہ एक जबर के साथ आती है, ठीक है। बस ये लाइन एफिजेंस की खासियत है। जैसे ला इलाहा, तो ला इलाहन नहीं होता बल्कि ला इलाहा होता है एक जबर के साथ, ठीक है। तो ये दो मेन बातें हैं लाइन एफिजेंस के बारे में याद रखने की, कि नंबर वन कि ये पूरे जिन्स की नफी करता है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई सोच रहा हो कि भाई क्या मतलब पूरे जिन्स की नफी करता है, ठीक है, तो उसके लिए फिर एक मिसाल मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज उसके बगैर ये बात समझ में नहीं आएगी कि पूरे जिन्स की नफी का मतलब क्या है, ठीक है। तो उसके लिए एक मिसाल जो दी जाती है ना, आम सी सादा सी मिसाल, वो ये दी जाती है कि अगर आप ये कहना चाहें कि घर में मर्द नहीं है, ठीक है, घर में किसी मर्द के बारे में आप कहना चाहें कि वो मर्द जो है ना वो घर में नहीं है, तो आप उसके लिए जो जुमला कहेंगे ना, वो कहेंगे ला रजुलुन फिद्दारी। दार कहते हैं घर को, तो ला रजुलुन फिद्दारी, घर में मर्द नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहें कि घर में कोई भी मर्द नहीं है, यानी कि बच्चे हो सकते हैं, औरतें हो सकती हैं, लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है, हत्ता के लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन मर्द कोई भी नहीं है, तो आपने क्या करना, क्या कहना चाह रहे हैं, आप मर्द के जिन्स की नफी करना चाह रहे हैं उस घर के अंदर मौजूदगी के लिए, यानी उस घर की घर के अंदर मौजूद जो लोग हैं ना, उनमें से आप मर्द की पूरी जिन्स की नफी करना चाहते हैं, यानी कोई भी मर्द घर में नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, आप ला नफी जिन्स इस्तेमाल करेंगे और आप ये कहेंगे ला रजुला फिद्दारी, ठीक है, ला रजुला फिद्दारी, कि घर में कोई भी मर्द नहीं है, ठीक है। तो देखें दोनों में फर्क है, ला रजुलुन फिद्दारी, आप किसी मर्द जिसको के कहने वाले के जहन में कोई कोई मर्द है कि जी वो मर्द जो है ना वो क्या घर के अंदर है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे, ला रजुलुन फिद्दारी, नहीं मर्द घर में नहीं है, ठीक है। यानी जिस मर्द का तस्वर जहन में है कि जी उस मर्द के बारे में सवाल किया जा रहा है या उस मर्द के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो बस आप एक मर्द के बारे में बता रहे हैं कि जी नहीं जी मर्द घर में नहीं है, ठीक है, आदमी घर में नहीं है, ठीक है, जैसे घर का आदमी, घर का बड़ा जिसको कहते हैं वो घर में नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क है, इन दोनों बातों के अंदर, ठीक है। तो ये है नफी जिन्स, ओके। तो ये बात अहम है लाइन ऑफ जिन्स के बारे में, और दूसरी बात अहम क्या है कि ये अपने बाद आने वाले इस्म को हालत नसब में डालता है और एक फतहा के साथ डालता है, क्योंकि जबर को अरबी में फतहा कहते हैं, इसमें जबर जो है ना ये अरबी का लफ्ज नहीं है, जबर फारसी का लफ्ज है जिसको कि उर्दू ने अडॉप्ट किया, ठीक है। इसी वजह से देखें ला इमाना, फिर ला अमानता, फिर ला दीना और ला अहदा, ठीक है। तो चारों ला नफी जिन्स हैं और चारों के बाद जो इस्म आ रहा है वो सिर्फ एक जबर के साथ हालत नसब में है, ठीक है। अब लुगात में फरमाते हैं कि अहद जो है उसका मतलब होता है वादा या वसीयत वगैरह, ठीक है, यानी आप भाई उर्दू में जिस तरह अहद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, और इसकी जमा उहूद आती है, ठीक है। قال تعالى ان العهد كان مسؤولا, कि बेशक अहद के बारे में सवाल किया जाएगा, मसूल यानी अहद एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, जैसे कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही था ना, कि तुमसे सवाल किया जाएगा, ठीक है, तुम्हारी रईयत के बारे में, उसी तरीके से अहद के बारे में भी सवाल किया जाएगा कि तुमने अहद क्यों नहीं पूरा किया। तशरीह में फरमाते हैं कि इस हदीस में मुसलमानों के औसाफ को बयान किया जा रहा है कि जिनके बगैर ये मुसलमान लज्जत ईमानी से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता, ये दोनों वस्फ हर मुसलमान में होना जरूरी है। इसी अहमियत के पेश नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर वाद व नसीहत में इस हदीस को बयान फरमाते थे, यानी रिमाइंड करवाते थे, ठीक है। इस हदीस को PDF पेज नंबर 125, अच्छा हाँ नहीं, PDF पेज नंबर 125 तो होगा, लेकिन बुक का पेज नंबर 148 ही है जैसा आपने ऊपर लिखा, ठीक है। तो बार बार रिमाइंड कराते थे कि भाई तुम अपने ईमान को अगर कामिल करना चाहते हो ना, तो अमानत में खयानत ना किया करो और अहद की यानी अहद को ना तोड़ा करो, ठीक है। तो फरमाते हैं कि पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। पहला वस्फ अमानत को पूरा करना, इसको कुरान में भी बयान फरमाया गया है कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, कि अल्लाह ताला तुमको हुक्म करता है कि तुम अदा करो अमानतों को उनके अहल लोगों की तरफ, यानी जिनकी वो चीजें हैं ना जो उन्होंने आपके पास अमानत के तौर पर रखवाई हैं, तो उनको ना सही सही वापस लौटाया करो जब वो तुमसे मुतालबा करें, ठीक है, तो सही सही लौटाया करो, ठीक है, और उसमें यानी खयानत ना किया करो, ना उसको झूठ बोलो, ना उसको खराब कर दो, ना उसको गुम कर दो, मुकर नहीं जाया करो अमानत के बारे में। अमानत अपने अंदर बहुत वसअत रखता है, यानी लफ्ज अमानत अपने अंदर बहुत वसअत रखता है। अमानत का मफहूम बहुत वसी है, मसलन ताजर की अमानत ये है कि लेन देन में बराबरी करे, राइट, क्योंकि जो उसका गाहक होता है वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ट्रस्ट का जो लफ्ज है ना ये देखें अमानत के लिए इस्तेमाल होता है, और ट्रस्ट में फिर वो एक एक यानी एक ज़हनी अमानत है, फिजिकली वो बंदा आपके ऊपर कोई चीज हो सकता है ना रखवा रहा, ठीक है, लेकिन अपना भरोसा आपके पास रखवा रहा है, ठीक है, तो उस भरोसे के अंदर खयानत ना करना कि तुम उसके भरोसे को तोड़ दो, ठीक है, तो लेन देन में बराबरी करें, यानी जितना पैसा ले रहा है उतनी चीज दे, उसके अंदर कमी ना करें। मुलाजिम की अमानत यह है कि अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से अदा करें, ठीक है, तो जैसा उसने एग्रीमेंट किया है अपने एम्प्लॉयर्स के साथ तो उसको ईमानदारी से पूरा करें, तो ये भी एक अमानत यानी अमानदारी ही कहलाएगी। किसान की अमानत यह है कि पैदावार में मुनासिब मेहनत करे वगैरह, ठीक है, जाहिर किसान की अपना खेत होता है तो उसमें तो वो खूब मेहनत करता ही है, लेकिन अगर किसी दूसरे के खेत में वो पैसा लेकर के काम कर रहा है यानी नौकरी कर रहा है तो उसको उसने फिर मेहनत कम के अहद का पूरा करना इत्माम दीन में से है, ठीक है, इत्माम यानी मुकम्मल करना। दूसरा वस्फ अहद और वादे को पूरा करना है, इसको भी कुरान ने बयान किया है कि वाउफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसूला, ठीक है, जैसे कि ऊपर इस आयत का हिस्सा आया था कि अपना अहद पूरा किया करो, बेशक अहद के बारे में पूछा जाएगा। अहद का मफहूम भी बहुत वसी है, इसमें हर किस्म का अहद दाखिल है, ख्वाह वो अहद इंसान और अल्लाह के दरमियान हो या इंसान का इंसान से हो। इस दूसरे अहद में तफसील यह है कि अगर अहद शरा के खिलाफ हो तो अब दूसरों को इत्तला करके इस अहद को ख़त्म कर देना चाहिए, यानी किसी ने किसी के साथ अहद कर लिया कि वो उसके साथ जा करके सिनेमा के अंदर फिल्म देखेगा, ठीक है, अब ये सिनेमा के अंदर फिल्म देखना इसमें बदनजरी होगी, मौसीकी सुननी पड़ेगी और हराम जगह के ऊपर जाना होगा, यहाँ पे के दूसरे गुनाह के काम होते हैं, ठीक है, तो ये जो आपने अहद कर लिया है तो इस अहद को पूरा करना इस हदीस के तहत नहीं होगा, ठीक है, बल्कि आपको ना उसको बता देना होगा कि जी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके साथ एक गैर शरी अहद कर लिया तो अब मुझे इस अहद को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अल्लाह की नाफरमानी करके आपके अहद को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह से हर चीज़ आ जाती है इसके अंदर, किसी को कत्ल करने का अहद कर लिया कि हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं फलाने शख्स को मार दूंगा, अब शरण उसको मारना जायज नहीं है, आप कैसे उसको मार सकते हैं, तो ऐसे अहद को तो खत्म कर देना होगा। और इंसान और अल्लाह के दरमियान अहद क्या है कि हर इंसान ने इस दुनिया में आने से पहले आलमुल अरवाह में अल्लाह ताला के साथ अहद किया हुआ है, जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सब ने जवाब दिया था बला या रब, कि हाँ बेशक आप हमारे रब हैं, ठीक है, तो रब मान लिया हम सब ने पहले से, तो ये हमारा अहद अल्लाह ताला के साथ हो चुका है कि हम अल्लाह ताला को अपना रब यानी पालने वाला मान चुके हैं। अब इस दुनिया के अंदर ना हमने सारी जिंदगी बेसिकली इस अहद को निभाना ही होता है, ठीक है, तो इस जब हम ऐसी हरकतें करते हैं कि हम अल्लाह की बजाय जो है वो किसी और को अपना रब मानना शुरू हो जाते हैं, या तो शिर्क करना शुरू हो जाए नऊज़ुबिल्लाह, या ये कि अकीदा तो हमारा यही है कि अल्लाह ही खालिक हैं और मालिक हैं और राजिक हैं, लेकिन अमलन जो है ना वो हम अपनी दुकान को अपना राजिक समझना शुरू हो जाएं या अपनी जॉब को अपना राजिक समझना शुरू हो जाएं, तो ये भी उस अहद के अंदर फिर गोया के कमी करने के मुतरादिफ होगा। ठीक ठीक है, तो फरमाया एक और जगह पे इसकी तशरीह में थोड़ा ये लिखा हुआ है कि अमानत जो है ना, वो भी चूंकि उसका मफहूम भी आम है, सिर्फ ये नहीं कि किसी ने आपके पास ला करके कुछ अपने घर का सामान रख दिया तो ये अमानत है, ठीक है, बल्कि अमानत जो है उस वो बहुत यानी वसी मानी में आती है। तो अल्लाह ताला ने जो हमें जान दी है, ठीक है, जो हमारा हमारी नफ्स यानी हमारी जान, जान के मानी में नफ्स, ठीक है, जो जान दी अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की अमानत है, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जैसे कि पिछले दोनों बयान में भी साजिद ने बात करी थी कि इस तरीके से ना, आप बच्चों को अगर देखें कि वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या वो जो है वो फजूल कामों में अपना वक्त जाया कर रहे हैं, जिससे कि उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, ना दुनिया का ना आखिरत का, तो आप उनको इस तरीके से समझाएं कि बेटा ये जो आपको अल्लाह ताला ने टाइम दिया है, ठीक है, अगर थोड़ा बड़ा समझदार बच्चा है तो आप टाइम के बारे में भी उसको समझाएं, ठीक है, कि जो टाइम आपको दिया है ना, ये आपकी जिंदगी है बेसिकली, और ये जिंदगी जो है वो आपकी मिल्कियत नहीं है कि आप उसको जैसे चाहें खर्च करें, ठीक, बल्कि ये आपको अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर दी है, और आपसे अल्लाह ताला पूछेंगे कि ये जिंदगी आपने कहाँ खर्च करी, तो आप अगर इसको किसी गलत काम के अंदर खर्च कर रहे हैं या बिल्कुल फजूल काम में खर्च कर रहे हैं, तो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा हमारी जान है, हमारी आंखें हैं, हमारे हाथ पैर हैं, तो ये सब का सब हमारे पास अमानत है अल्लाह ताला की। तो उसमें आप मिसाल दे सकते हैं कि अगर हम किराए पे रहते हैं, बहुत सारे लोग किराए के घरों में रहते हैं, ठीक है, तो वो किराए का घर जो होता है वो हमारे पास अमानत होता है, हम उसको इस्तेमाल तो करते हैं अपने फायदे के लिए, उसमें हम रहते हैं, उसके अंदर हम खाते पीते हैं, सोते हैं, लेकिन वो हमारी मिल्कियत तो नहीं बन जाता ना, हमने तो इन द एंड उसका किराया देना होता है, और मालिक मकान जो होता है वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि हम उस मकान को अब्यूज ना करें, खराब ना करें उसको, ठीक है, जिस मकसद से दिया है ना, उस मकसद की हद तक ही उसको रखें। अगर मकान को खराब करेंगे तो मालिक मकान आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा, ठीक है, आपसे पैसे लेगा, और जैसे कि प्रॉपर सिस्टम में होता है, और अल्लाह ताला का सिस्टम तो सबसे प्रॉपर है, ठीक है, ठीक है भाई, पाकिस्तान में ये प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं होता या इंडिया में फॉलो नहीं होता, और किराएदार जो होते हैं वो घर पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, और मालिक मकान कुछ कर नहीं पाता, भाई वो तो इंसानों का मामला है ना, अल्लाह ताला के साथ तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप अपने जिस्म के ऊपर कब्जा कर लें और अल्लाह ताला फिर आपसे उसको छुड़ा ना सके, भाई अल्लाह ताला तो एक फरिश्ते को भेजेंगे और आपसे वो छुड़ा लेंगे, ठीक है, वो तो कोई मसला ही नहीं है। तो जान जो है और एक एक चीज हमारे पास जो मौजूद है, वो सब की सब अल्लाह ताला की अमानत है, हम उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह की मर्जी से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल यही चीज जो है वो हमारी औलादों पर भी अप्लाई होती है, ठीक है, हम औलादों को अपनी प्रॉपर्टी समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अब हमारी मिल्कियत है, और मिल्कियत के बारे में तो कोई आपसे सवाल नहीं कर सकता ना कि जी आपने क्या किया अपनी मिल्कियत के साथ, तो औलादों को अपनी मिल्कियत समझते हैं तो फिर उनको अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, लेकिन औलादें हमारी मिल्कियत नहीं है, औलादें भी हमारे पास अमानत है, ठीक है, तो वो भी अल्लाह की तरफ से हमें अमानत मिली है, और उनको हमें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही चलाना है, अगर नहीं चलाया तो इसका भी हिसाब देना होगा, और ये हिसाब तो सबसे खतरनाक हिसाब है, ठीक है, इसलिए कि ये औलादें तो हमारी तमाम मोहब्बतों के बावजूद अगर इनको जहन्नुम में जाना पड़ गया ना, तो ये तो अल्लाह ताला से शिकायत करेंगे कि अल्लाह ये हमारे वालिदैन ने हमें इस रास्ते पर लगाया था, तो आप इन वालिदैन को डबल अजाब दें, दुगना अजाब दें, ठीक है ना, कुरान के अल्फाज हैं इस तरह से कि छोटे जो है ना वो बड़ों के लिए अल्लाह ताला से कहेंगे कि अल्लाह इन बड़ों ने हमें बुराई के रास्ते पर डाला था, आप इनको दुगना अजाब दें, और अल्लाह ताला जवाब देंगे कि तुम सबको दुगना अजाब मिलेगा, ठीक है, तो ये औलादें ना हमारे गले पड़ जाएंगी कयामत के दिन अगर हम उनको अपनी मर्जी से उनको उठाएंगे, उनको चलाएंगे, ठीक है, तो ये सब अल्लाह की अमानतें हैं, और इनको हमने अल्लाह की मर्जी से ही इस दुनिया के अंदर लेके चलना है, लेके चलने से मुराद उनकी तरबियत अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करनी है, उनको खाना पीना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक देना है, उनको पहनना ओढ़ना उनका जो है अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करना है, उनको तालीम जो है वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक देनी है, ठीक है, तो ये अच्छा, ठीक है, कोई सवाल है अगर इस हदीस के बारे में तो पूछ लीजिए। अच्छा, कोई दीन नहीं है, यानी अमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की अहमियत को बताने के लिए फरमाया कि भाई अगर तुम्हारे पास अमानतदारी नहीं है, और तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ईमान जो है ना वो कामिल नहीं है, तो इस वजह से उम्मत के उलमाए कराम का इस बात पर इजमा है कि ला ईमान लिमन ला अमानत लहू का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अमानत में खयानत करता है तो वो काफिर हो जाता है, ठीक है, काफिर वो नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर नहीं है, बल्कि इन ये जो ला नफी की गई ना, ये कमाल ईमान की नफी की गई है, ठीक है, ये नफ्स ईमान की नफी नहीं की गई, ये दोनों फर्क होती हैं, इन दोनों बातों में फर्क होता है कि कमाल ईमान की नफी का मतलब ये है कि आपका ईमान कामिल नहीं है बल्कि नाकिस हो गया, और इसके बारे में हम पहले कई दफा बात कर चुके हैं, ठीक है। और एक चीज होती है नफ्स ईमान की नफी, तो नफ्स ईमान की नफी का मतलब ये होगा कि ईमान खत्म हो गया और आप काफिर हो गए, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं, तो उन सब का मतलब क्या होता है कि अगर आप ईमान वाले हैं, यानी कि आपने अल्लाह की तस्दीक करी है, अल्लाह की वहदानियत की, राइट, और फरिश्तों की और रसूलों की और किताबों की, ठीक है, और क़यामत के दिन की और कदर की, ठीक है, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बअथ बाद अल मौत, ठीक है, तो फिर आप जो हैं वो ईमान वाले ही कहलाएंगे, दुनियावी एतबार से भी और इंशाल्लाह आखिरत के एतबार से भी आप ईमान वालों में शामिल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस किस्म की गलतियां ना छोड़ी ना, तो वो आपका ईमान जो है वो रहेगा तो सही, लेकिन नापिस होगा। उसी तरीके से ला दीन लिमन ला अहद हो का मतलब भी कि दीन जो है वो एक निज़ाम, जिंदगी गुजारने का निज़ाम जो होता है ना, उसको दीन कहते हैं, ठीक है, जो कि ईमान की रोशनी में इंसान गुजारता है। तो अगर वो अहद को करके तोड़ देता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो तो किसी निज़ाम के तहत ही नहीं है, वो तो आज़ाद अपने अपने हिसाब से जिंदगी गुजार रहा है, तो इसका मतलब ऐसे ही है जैसे कि वो किसी निज़ाम के तहत नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट मनमर्जी की जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है, अहद करता है फिर तोड़ देता है, कोई किसी निज़ाम का पाबंदी नहीं है, राइट। अच्छा, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अगली हदीस भी शुरू कर लेते हैं आज। तो अगली हदीस के अल्फाज यह हजरत अबी सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने फरमाया कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हलीमा इल्ला ज़ू असरतिन असरतिन वला हकीमा इल्ला ज़ू तजरिबतिन, ठीक है। तो पहला जो ला है वो ला नफी जिन्स है, तर्जुमा इसका ये बा मुहावरा बनता है कि कोई शख्स कामिल बुर्दबार नहीं हो सकता जब तक कि वो लग्जिश ना खाए। अच्छा, और अच्छा इल्ला जो, हाँ, जब तक कि वो लफ्जिश ना खाए, वला हकीमा इल्ला जो तजर्बतन, और कोई कामिल हकीम नहीं हो सकता जब तक उसको तजुर्बा हासिल ना हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर जो अल्फाज हैं उनमें ला तो ला नफी जिन्स हो गया, जो कि नफी कर रहा है हलीम की, ठीक है, और हलीम जो है वो हिल्म वाले को कहते हैं, ठीक है। हिल्म का मतलब बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी, और अंग्रेजी में इसको फोरबेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो कोई तहम्मुल मिजाज नहीं हो सकता या बुर्दबार नहीं हो सकता जब तक के इल्ला जू असरतें, जब तक के वो असरा वाला ना हो जाए। जू का मतलब क्या होता है, जू जो है एक खास किस्म का इसम होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है वाला। हालत रफा में ये जू होता है, हालत नसब में ये जा बन जाता है, जाल अलिफ, ठीक है, और हालत जर में ये जी बन जाता है, ठीक है। तो जू जा जी, रफा नसब जर, ओके। लेकिन तर्जुमा तीनों हालतों में इसका वाला ही होता है, ठीक है। तो हालत तब्दील तो सिर्फ उस वक्त होती है जब इससे पहले कोई ऐसी चीज आ रही हो जो उसको हालत नसब में डाल रही हो या उसको हालत जर में डाल रही हो, तो फिर उसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी, लेकिन तर्जुमा वही रहेगा, ठीक है। तो जू असरतन का मतलब होता है असरह वाला, ठीक है, जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं ना जी शऊर, ठीक है, तो शऊर वाला, लेकिन उसमें उर्दू जुबान में कुछ हिकमत है या क्या वजह है कि अरबी के अल्फाज जो है ना वो उर्दू जुबान में जो लिए गए ना, तो अक्सर मौके पे देखा कि वो हालत जर की शक्ल में लिए गए, ठीक है। तो हम उर्दू में ना शऊर वाले को जू शऊर नहीं कहते, जा शऊर भी नहीं कहते, बल्कि जी शऊर कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या वजह बनी कि जब अरबी से अडॉप्ट किए जा रहे थे कुछ अल्फाज लश्करी जुबान के अंदर, तो लश्करी जुबान थी ना मुगलों के लश्कर के अंदर ये बनी, तो हालत जर वाले अडॉप्ट कर लिए और नसब और रफा वाले अडॉप्ट ना किए। ठीक है, उसी तरह जी अकल अकल वाले को कहते हैं, ठीक है, उर्दू जुबान में भी। तो असरा का मतलब क्या होता है? लग्जिश खाना, ठीक है, यानी कोई चोट खाना जिसको कहते हैं, लग्जिश खाना, गिरना, गिरना भी इसके मानी में आया। तो कोई हलीम नहीं हो सकता जब तक कि वो चोट खाने वाला ना हो। वला हकीमा इल्ला जु तजरबतन, तो इसमें भी हकीम का जो लफ्ज है ये भी यानी अच्छा, हलीम और हकीम ये दोनों जो है वो सीगे के एतबार से सिफत कहलाएंगे। सिफत मुशब्बहा का एक सीगा होता है, जैसे इस्म फाइल होता है, इस्म मफूल होता है, इस्म ज़र्फ़, इस्म आला, इस्म मज़दर, उसी तरीके से एक एक सीगा होता है सिफत मुशब्बहा, ठीक है, यानी वो सीगा जो कि सिफत से मुशाबहत रखता है। ठीक है, तो ये हलीम और हकीम वगैरह जो है ना, ये सब सिफत मुशब्बहा के सीगे बनते हैं। तो बिकॉज इनमें एक सिफत है ना, हिकमत की सिफत जिसमें होती है उसको हकीम कहते हैं, हिल्म की सिफत जिसमें होती है उसको हलीम कहते हैं, राइट। इल्ला जू तजरबतन, तजुर्बे वाला, जब तक कि वो तजुर्बे वाला ना हो, एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, कोई सवाल है तजुर्बे के बारे में? लुगात में उन्होंने सिर्फ हलीम का ही मानी लिखा है, जैसे काला ताला लअवाहुन हलीम, कि वो बहुत रोने वाले, अवाह जो है वो रोने वाले को और हलीम जो है वो बार बार को। अच्छा, तशरीह, एक्चुअली अवाह के माने मुझे जहाँ तक याद बताया, उसको आप 100% एक्यूरेसी के साथ ना लिखेगा, मेहरा को चेक करने के बाद इंशाल्लाह। तशरीह, हदीस का मतलब ये है कि जब तक आदमी मामलात वगैरह में नफा व नुकसान बर्दाश्त नहीं करता, वो एहतियात नहीं करता। ठीक है, यानी जब गिरते हैं तभी संभलते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है वो ज़्यादा एहतियात करते हैं। ठीक है, और जब इसको धोखा या नुकसान हो जाए तो फिर ये एहतियात से चलता है और फिर उन असबाब से दूर रहता है जिससे उसको पहली मरतबा नुकसान हुआ है। जैसे कि एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी है कि मुसलमान को एक सुराख से दो मरतबा नहीं डसा जा सकता, यानी एक दफ़ा जब उसको एक जगह से नुकसान पहुंच जाए ना, तो फिर वो एहतियात करता है। तो यही हिकमत की बात है, दूसरे अंदाज में फरमाई यहाँ पर। तो अकलमंद आदमी को जब एक जगह से नुकसान हो जाए तो फिर वो उसके करीब भी नहीं जाएगा, एहतियात करता है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जिसको कि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, ठीक है, तो वो जो है ना, दूध का जला छाछ को भी, छाछ जो है वो यानी ठंडी झाग होती है, जो कि जैसे लस्सी के ऊपर छाछ बन जाती है, तो वो तो एक ठंडी झाग होती है, लेकिन चूंकि उसकी शक्ल भी दूध जैसी होती है ना, तो वो इवन छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है कि भाई कहीं ये भी उस तरह गर्म ना हो जिस तरह से कि मैंने गर्म दूध पी लिया था। ठीक है, लेकिन इसमें एक जरा ज्यादा एहतियात है, जिसको कि थोड़ा अंग्रेजी में कहते हैं ना, बींग पैरानॉइड। ठीक है, तो इतना नेगेटिव इसमें कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि अब एक दफ़ा आपको कहीं से नुकसान हो गया तो आप बिल्कुल ही पैरानॉइड हो जाएं और बहुत ही यानी गोया के नफसियाती मरीज बन जाएं और उस जगह से भागना शुरू हो जाएं, बल्कि इसका मतलब इस हद तक ये होगा कि एहतियात करता है बंदा। ठीक है, और आसानी से फिर किसी के झांसे में नहीं आता जिस जगह से उसको नुकसान हो जाए। अच्छा, हकीम के लिए तजुर्बा ज़रूरी है, तो फरमाया कि वला हकीम इल्ला ज़ू तजरबतिन, कि हकीम कहते हैं दाना अकलमंद को, या चीज़ की असलियत और हकीकत के जानने वाले को, और तजुर्बा कहते हैं कि काम की वाकफियत का होना और चीज़ों के तरीकों को जानना। ठीक है, तो अब हदीस का मतलब ये हुआ कि ऐसा शख्स जिसके सामने मामलात वगैरह के उतार चढ़ाव, बुराई अच्छाई सब हो, तो उस शख्स को हकीम कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जो है वो इंसान को बहुत फ़ायदा देता है, और अकलमंद इंसान जो होता है वो एक्सपीरियंस को याद रखता है और उससे फिर फ़ायदा उठाता है। बेवकूफ़ की तरह वो एक्सपीरियंस खाने के बावजूद ना समझे, ठीक है, तो ये उसकी बेवकूफ़ी की अलामत होती है। तो हिकमत के लिए जो है ना, वो खाली किताबें पढ़ना काफ़ी नहीं होता, उसके लिए जिसको कहते हैं ना, जी मैंने धूप में बाल सियानी किए, बल्कि दुनिया देखी है और वक्त गुजारा है दुनिया के अंदर और जगह जगह के मामला देखे, तब जो है मेरे बाल सफ़ेद हुए, यानी मेरी जो उम्र है ना, तो इस उम्र को मैंने यानी تجربے حاصل کرنے میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایسا ہی شخص ہوتا ہے وہ حکیم ہوتا ہے, یعنی زیادہ حکمت اس کے اندر ہوتی ہے. آگے فرمایا کہ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اس حدیث میں حکیم سے مراد عرفی حکیم اور ڈاکٹر ہے. تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ صرف طب اور ڈاکٹری کی کتابیں پڑھنے سے کوئی طبیب یا ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک کہ وہ مشق اور تجربہ نہ کرے. ٹھیک ہے, جیسے کہ پتہ ہی آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر اس کو ہاؤس جاب کرنا کہتے ہیں, کم از کم 2 سال کی ہاؤس جاب ہوتی ہے, اور امریکہ وغیرہ کے اندر تو 4 سال کی ریزیڈنسی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, 4 سال پڑھاتے ہیں اور 4 سال ریزیڈنسی کرواتے ہیں, تو اس طرح 8 سال کا ان کا ایم بی بی ایس ہو جاتا ہے. یعنی بڑوں کے نگرانی میں وہ پریکٹس کرتا ہے پہلے, پھر اس کو بورڈ سرٹیفیکیشن ملتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں اگر کوئی اور بات ہو. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ کوئی بات تو سامنے نہیں ہے اس وقت. 15 منٹ تقریباً ہیں, تو ایک اور حدیث بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. حدیث نمبر 80 روضۃ التعلمین کے حساب سے فرماتے ہیں کہ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال, ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے. دیکھیں یہاں پر جس طرح اس کو چھوڑے, ابھی کا لفظ میں نا جیسے آیا نا با کے ساتھ یا لگ گیا, تو یہ بھی حالت جر کی وجہ سے لگا ہے, کیونکہ ان جو ہے وہ حرف جر ہوتا ہے, اور حرف جر میں کے بعد جو یہ اب آیا نا اب کا لفظ, تو وہ حالت جر میں چلا گیا اور اس کو ابھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اب بھی جو ہے وہ زو ہی کی طرح کا ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کو بتایا تھا نا کہ زو حالت رفع میں, زا حالت نصب میں, اور جر میں حالت یعنی زی حالت جر میں, تو اب کا لفظ جو ہے نا یہ بھی اسی کیٹیگری میں سے ہے جس کیٹیگری سے زو تعلق رکھتا ہے. تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حالت رفع میں ابو, حالت نصب میں ابا, اور حالت جر میں ابی. ٹھیک ہے, جیسے زو زازی ہوتا ہے اسی طرح سے ابو ابا ابی. ٹھیک ہے, تو چونکہ ان کی بات آ رہا ہے نا, تو ابھی ذر پڑھیں گے اس کو, ابا ذر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا ابا ذر. دیکھیں یہاں پر ابا ذر بن گیا. ٹھیک ہے, ذر کا باپ. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ یا کے بعد جب کوئی اسم آتا ہے تو وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ مضاف ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ مضاف ہو کسی اسم کے کی طرف تو وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یا ابا ذر, یا ابو ذر کہیں گے نا تو غلط ہوگا, یا ابی ذر کہیں گے تو غلط ہوگا, بلکہ یا ابا ذر. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ایجپشنز ہوتے ہیں خاص طور پر, اور ایجپشنز سے بیچارے یہ سعودی جو ہوتے ہیں نا, انہوں نے بھی اپنی عربی جو ہے وہ ایجپشنز سے سیکھنی شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایجپشنز کو خاص طور پر دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا نام ان میں سے عبداللہ ہو نا, تو وہ عبداللہ نہیں کہتے, بلکہ کیا کہتے ہیں, عبداللہ. عبد کے اوپر نا زبر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ عبداللہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ اسی لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب کسی عبداللہ کو پکارتے ہیں نا, تو پکارنے کے لیے لفظ یا استعمال ہوتا ہے, یا. ٹھیک ہے, او جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں, انگلش میں بھی او کہتے ہیں, تو یا کے بعد جو ہے نا وہ لفظ عبد جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ مضاف بن رہا ہے لفظ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے, بندہ اللہ کا, عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, بندہ اللہ کا, یعنی مضاف مضاف لے ہی. ٹھیک ہے, تو یا کے ساتھ جب آپ پکاریں گے نا, تو یا عبداللہ کہنا ضروری ہے, یا عبداللہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ یا نہ بھی لگا رہے ہو لیکن آپ پکار رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پکارنے میں جو ہے نا وہ یا کو ایزیوم کیا جائے گا, تو اس وجہ سے پکارنے کی حالت میں آپ اس بندے کو عبداللہ ہی پکاریں گے, عبداللہ. ٹھیک ہے, عبداللہ نہیں پکاریں گے, بے شک آپ یا نہ سما کر لو پھر بھی. ٹھیک ہے, لیکن کیچ کدھر ہے, کیچ یہ ہے اس کے اندر کہ اگر آپ فارم فل کر رہے ہو کبھی رائٹ یور نیم, تو وہاں پر جو نام لکھا جائے گا نا وہ عبداللہ نہیں لکھنا چاہیے, وہاں پر کیا لکھنا چاہیے, عبداللہ لکھنا چاہیے. اس لیے ڈیفالٹ حالت جو ہے وہ رفع ہے, ڈیفالٹ حالت نصب کی تھوڑی ہے, لیکن وہ جو ہے نا وہ فارم کے اندر بھی عبداللہ ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ پکارنے والا کام کی تھوڑی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ابا ذر جو ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ یا لگا ہوا ہے اس سے پہلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر, اے ابو ذر, لا اقلا کتدبیری ولا ورع کل کفی. कि कोई अकल नहीं है तदबीर के जैसी, यानी कोई अकलमंदी नहीं है तदबीर के जैसी, ठीक है, वला वरा, और कोई वरा नहीं है। वरा का मतलब क्या होता है? तकवा के लिए एक अल्टरनेटिव वर्ड जो है ना वो वरा है। तो उर्दू में कभी हम कहते हैं वरा और तकवा, दोनों को ना इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों का तकरीबन एक ही मानी है, वरा और तकवा, ठीक है, यानी गुनाहों से रुकना, गुनाहों से बचना, उसके लिए तकवा का लफ्ज भी आता है और वरा का लफ्ज भी आता है। तो ला वरा और नहीं है कोई तकवा कल कफी, परहेजगारी के परहेज के जैसा। कफ कहते हैं रुक जाने को, ठीक है, अपने आप को रोक लेना, अपने आप को किसी यानी बाज रखना, ठीक है, जिसको कहते हैं ना करीब ही ना फटकना, जहां पर गुनाह का शायबा भी होना वहां पर करीब ही ना फटकना, तो इसको कफ कहेंगे। जुबान को जैसे आपने रोक लिया कि चलने ही ना दें, बेशक आपके ख्याल में आपने अच्छी बात कहनी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी एक शक था कि पता नहीं अच्छी बात निकलेगी या हो सकता है मैं आगे जाकर के स्लिप ना कर जाऊं, मेरी जुबान जरा तेज चलती है, ठीक है, तो बेहतर यह है कि अपनी जुबान को रोक के रखें, ठीक है, तो कफ का मतलब ये होगा, ठीक है। तर्जुमा तो इंशाल्लाह क्लियर ही होगा। आगे लुगात में तदबीर का बताते हैं कि गौर करना, इंतजाम करना, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं प्लानिंग करना, तो और लेकिन सिर्फ प्लानिंग करने के माने में नहीं आता, क्योंकि प्लानिंग जो है वो गौर करने के माने में आएगा ना, आप मेंटली किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके आगे बढ़ करके जब आप उसके लिए इंतजाम भी करना शुरू हो जाते हैं, यानी असबाब इकट्ठे करना शुरू हो जाते हैं, फिर आप उसके लिए कुछ अमल भी करना शुरू हो जाते हैं, तो ये सब का सब जो है वो तदबीर के माने में आ जाता है, ठीक है। और ये लफ्ज जो है वो अगेंस्ट इस्तेमाल होता है दुआ के, ठीक है, क्योंकि दुआ जो है ना वो एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप तदबीर नहीं कर रहे होते हैं, उसमें आप अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं, ठीक है, आप जो है वो बेसिकली अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन अल्लाह के साथ, अल्लाह ऊपर रहे, ठीक, हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक, ठीक है, अर्श पर है अल्लाह ताला, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन को कहते हैं दुआ। और जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है ना, जो कि अपने जैसे बंदों के साथ होती है, अपने साथ रहने वालों के साथ या दूसरी मखलूक मखलूक के साथ, ठीक है, तो वो जो होती है वो तदबीर, वो सब कुछ फिर तदबीर में आ जाता है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जी दुआ करें फिर दवा करें, तो दवा करना क्या मतलब, यानी तदबीर करें, ठीक है। उसके बाद है लफ्ज वरा, तो वरा के बारे में बता रहे हैं कि इसका फेल माजी जो है वो वरिया यर और इसका मुजारे यरवाऊ समिया यस्माऊ बाप से आता है, ठीक है, तो ये जो छह आपको अब बाप बताए थे ना सुलासी मुजरद के, नसरा यंसुरु दरबा यदरबु समिया यस्माऊ फतह यफतहु करुमा यकरुमु और हसिबा यहसबु, हसिबा यहसिबु, ठीक है, तो उन छह में से ये कौन से वाले बाप से ताल्लुक रखता है, समिया यस्माऊ बाप से ताल्लुक रखता है, इसलिए कि इसका माजी जो है वो वरिया बनेगा समिया के पैटर्न पर, और इसका मुजारे जो है वो यरवाऊ बनेगा, ठीक है, बल्कि यौराऊ, सॉरी यौराऊ यस्माऊ के वजन पर, ठीक है। अच्छा, इसका मजदर जो है वो वराअन ही है, या वराउन या वराअन या वराइन, जो भी आप कहना चाहें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है ना, जुमले में ये हालत नसब में आ रहा है तो वराअन होगा, हालत जर में आ रहा है तो वराइन होगा, और हालत रफा में आ रहा है तो वराउन होगा, ठीक है, तो वरा जो है वो इसका मस्तर है, जिसका मतलब होता है परहेजगार होना, मुत्तकी होना, ठीक है, और अलकफ का मतलब होता है बाज रहना, ये भी मस्तर है अलकफ, और इसका भी माजी मुजारे आप यानी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, ये कफा यकुफ्फु, कफा यकुफ्फु, तो कफा में फा के ऊपर तशदीद होगा, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि तशदीद जब होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि असल में ये दो थे, फा के ऊपर तशदीद है ना, तो फा दो थे असल में, असल में फिर क्या था, ये कफा नहीं था असल में, कोई बता सकता है रिवीजन के तौर पे कि कफा असल में क्या था, कफा या कुफ्फु, तो फिर इसकी असल क्या बनती है अगर आप तशदीद को हटा दें, कफा फा, बिल्कुल सही है, और बाब नसरा से है ये, तो अब आप इसका मुजारे भी बता सकते हैं। ये तो आपने माजी बता दिया सही, कफफा। मुजारे क्या बनेगा? बाब नसरा से, यकफुफु। बिल्कुल सही है, ठीक है। यनसुरु के बदन पर यकफुफु, तो यकफुफु में भी फा को फा में इदगाम कर देते हैं तो ये यकफु बन जाता है, ठीक है। तशरी में फरमाते हैं कि तदबीर कहते हैं हर काम के अंजाम पर नजर रखना और इसके लिए सामान मुहैया करना। अब यानी प्लानिंग जो होती है वो अच्छी क्या होती है? जिसके अंदर आप सिर्फ जो है वो स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द जॉब पे नजर नहीं रखें, बल्कि एंड रिजल्ट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, कहाँ पे आपने अपनी मेहनतों को खत्म करना है और कहाँ पे आपने कंक्लूजन एक्सपेक्ट करना है, रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना है, ये सारी चीजें पे प्लानिंग के अंदर आती है ना। तो तदबीर में फरमाते हैं कि ये सारी चीजें शामिल है। अब हदीस का मतलब ये हुआ कि कोई भी अकल तदबीर यानी जिसमें अंजाम पर नजर रखी जाए, ये इसके बराबर नहीं हो सकता कि जिस काम में अंजाम को ना देखा जाए। ला अकला का तदबीरी, यानी अगर आप तदबीर प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक्चुअली इसको इस तरह से नहीं उन्होंने लिखा है, लेकिन मकसूद यही है कि अगर आप अनप्लैंड कोई काम शुरू कर देते हैं तो फिर ये अकलमंदी की बात नहीं है, ठीक है। वराह के मानी, अच्छा खैर, प्लानिंग के अंदर जाहिर है फिर बहुत सारे लेवल्स होते हैं कि कितनी डिटेल प्लानिंग आप कर रहे हैं। कभी आप सुपरफिशियली हाई लेवल प्लानिंग से भी आप कुछ काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टास्क, ठीक है। भाई कितनी उसके अंदर सेफ्टी इन्वॉल्व है, कितनी सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, कितना उसके अंदर कैपिटल इन्वॉल्व है, इन सब से प्लानिंग के ऊपर फर्क पड़ता है ना। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है $1 मिलियन का, तो उसमें बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, ठीक है। और एक जो है वो बस ₹1,000 का प्रोजेक्ट है, $1,000 का, तो उसमें उतनी प्लानिंग तो नहीं करेंगे जितनी कि आप $1 मिलियन के प्रोजेक्ट में करते हैं। प्लानिंग फिर डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस टास्क के ऊपर। अच्छा, वराह के मानी परहेजगारी और तकवा के हैं, मगर बाज़ उलमाए कराम तकवा और वराह में फ़र्क के कायल हैं। वो ये कहते हैं कि तकवा तो कहते हैं हराम चीज़ से इज्तनाब करना, मगर वराह का मतलब ये होता है कि आदमी उन चीज़ों से भी इज्तनाब करे जो हराम के कबील से हों, और इसके साथ साथ मकरूह और मुश्तबा चीज़ों से भी इज्तनाब करना, ठीक है। यानी जिसको के हराम के कबील से मकरूह तहरीमी जिनको कहते हैं, कि जिनके बारे में कुरान का सरीह हुक्म नहीं है, तो आप उसको हराम नहीं कह सकते, ठीक है ना। अगर कुरान का या हदीस मुतवातिर के अंदर क्लियरली उसको छोड़ने का हुक्म आया, ठीक है, या उसको करने के बदले में अजाब की वईद आई, ठीक है, तो ऐसी चीजें हराम कहलाती हैं। लेकिन किसी चीज के बारे में ऐसी वईद नहीं है, ठीक है, तो आप उसको हराम नहीं कह सकते, ठीक है। तो फिर उसके लिए हमारे फुकाहा ने, क्योंकि मुमानियत तो है, ठीक है, कोई कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मुमानियत आती है, किसी हदीस से सही से आती है, ठीक है, सहाबा कराम के अमल से आती है, ठीक है, तो अब आप उसको हराम तो करार नहीं दे सकते, तो फिर उसके लिए मकरूह तहरीमी का एक बाकायदा कैटेगरी फुकाहा ने मुरतब करी, ठीक है। तो उसको कहेंगे कि हराम की कबील से है, अगरचे के खुद हराम नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर मकरूह तंजीही एक और कैटेगरी बनाई, जिसके अंदर के यानी मकरूह तहरीमी से भी कम दर्जे की कराहियत रखने वाली चीजें शामिल करी, और मुश्तबा चीजें जो हैं वो तो मकरूह तंजीही में भी नहीं है, लेकिन उनमें भी इश्तबा है कि भी शायद हला सही हो, शायद खराब हो, तो शुबा है जिनके अंदर, तो वो भी उससे भी इज्तनाब करना, ये सब वरा के अंदर आता है। कफ्फा के मानी है एहतियात करना, और वरा और कफ में कोई फर्क है या नहीं, बाज़ उलमा इन दोनों को भी मुतरादिफ कहते हैं, यानी हम मानी ही कहते हैं, मगर बाज़ इन दोनों के दरमियान फर्क करते हैं। तो सवाल कहते हैं कि जब कफ और वरा एक ही मानी में हो जाए तो हदीस का मतलब कुछ यूं हो जाएगा कि बाज़ रहना बाज़ रहने के बराबर बराबर नहीं, ठीक है। वला वरा कल कफी, यानी कोई बाज़ रहना जो है वो बाज़ रहने जैसा नहीं, ठीक है। तो ये तो बड़ा बेमानी सा जुमला हो जाता है ना। तो इसका जवाब अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह अलैह का नकल करते हैं कि मतलब हदीस का अगरचे ऐसा होता है, मगर मुसलमानों को ईज़ा देने या जुबान को लघ बातों में मशगूल रहने करने से बाज रखना, इसमें बहुत से मफासद और बुराइयां होती हैं, इसलिए अजराह मुबालगा इस तरह बयान कर दिया गया है। बाज उलमाए जवाब देते हैं कि वरा और कफ़ा में फ़र्क है, वरा इम्तिसाल और इज्तनाब दोनों को शामिल होता है, और यानी जिन उमूर का हुक्म दिया गया है उनको करना, और जिनसे मना किया गया है उनसे बाज रहना। और कफ़ा जो है वो सिर्फ इज्तनाब को कहते हैं, मानी जिन उमूर से रोका गया है उससे बाज रहे। तो दोनों अलग अलग हैं। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर तो बेमानी से जुमला हो गया। तो इस तरह से उलमा जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं, और जाहिर है हर आलिम जो एक्सप्लेनेशन देता है तो वो उसके पीछे उसके पास दलील होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं से उसने अभी यानी इबारत में इस तरह से इस्तेमाल देखा होता है अल्फाज का, ठीक है। तो इसी वजह से ना वो इसको दलील के तौर पर पेश करता है कि भाई लफ्ज़ बरा जो है वो इस मानी में भी इस्तेमाल होता है कि इम्तिसाल जिसको कहते हैं, और इस तरह के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है फलानी जगह पर। तो इस तरह से उलमा जो बातें करते हैं, ओपिनियंस देते हैं, तो ओपिनियंस जो है वो किसी न किसी दलील के बेसिस पर देते हैं। बहरहाल ये टाइम भी मुकम्मल हो गया है और 3 हदीसें अलहम्दुलिल्लाह आज हो गई हैं। मजीद कोई सवाल वगैरह हो तो क्लास में आप पूछिएगा। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।